नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। घरों तक डीजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी हमसफर इंडिया की चालू वित्त वर्ष में देश के 200 और शहरों में सेवाओं का विस्तार करने की योजना है, ताकि इस क्षेत्र में अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सके। कंपनी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। हमसफर इंडिया भारत के लगभग 100 शहरों में सेवाएं देती है। कंपनी की ई मोबाइल वाहन चार्जिंग स्टेशनों के कारोबार में उतरने की योजना भी है और उसकी कुछ कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि हमसफर अपने सेवा के विस्तार के लिए विदेशी बाजारों में अवसर तलाश कर रही है। हमसफर इंडिया की सह संस्थापक सानिया गोयल ने कहा, वर्तमान में डीजल की घर पहुँच सेवा में हमारी बाजार में हिस्सेदारी 20% है। चालू वित्त वर्ष के दौरान हमारी 30% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना है। गोयल ने कहा कि मोबाइल पेट्रोल पंप के जरिए डीजल उपलब्ध करवाना कंपनी की एक बड़ी उपलब्धि है और अब कंपनी देश के कोने कोने तक पहुंचना और भविष्य में हर तरह की ऊर्जा के वितरण में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहती है। दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की को लोकेशन मामले में जमानत याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। आरोपियों के वकील अर्शदीप सिंह और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था और कहा था कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा था कि अपराध की प्रकृति बहुत ही गंभीर है और इसकी आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में प्राथमिकी मई 2018 में दर्ज की गई थी, जिसके बाद हाल में शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एनएससी रामकृष्ण और रवि नारायण समेत दो अन्य अधिकारियों पर वरिष्ठ स्तर पर भर्ती में खामियों को लेकर जुर्माना लगाया था। नारायण 1994 से मार्च 2013 तक एनएससी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, जबकि रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएससी की प्रबंध निदेशक और सीईओ थी। मानव संसाधन मंच फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड ने आईपीओ से 800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास शुरुआती दस्तावेज जमा करवाए हैं। फर्स्ट मेरिडियन द्वारा जमा कराए मसौदा दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ के तहत 50 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं प्रवर्तक और मौजूदा शेयर धारक 750 करोड़ रुपए तक की बिक्री पेशकश लाएंगे। कंपनी की प्रवर्तक मैन पावर सॉल्यूशन लिमिटेड ओएफएस के तहत 665 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी और मौजूदा शेयर धारक न्यू लेन ट्रेडिंग एलएलपी और सीड थ्री ट्रेडिंग एलएलपी क्रमशः 45 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे। कंपनी के देश भर में 50 से अधिक शाखा कार्यालय हैं, जहां 75 शहरों के लिए मानव संसाधन भर्ती की सुविधा दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का शेयर बृहस्पतिवार को 11% से अधिक टूट गया। मार्च 2022 को खत्म हुई तिमाही में पीएनबी के एकल शुद्ध लाभ में 66% की गिरावट आई थी। पीएनबी का शेयर बीएससी और एनएससी पर 11.17% गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर 29.40 रुपए पर पहुंच गया। बुधवार को पीएनबी का मार्च 2022 में समाप्त बीते वर्ष की चौथी तिमाही का एकल शुद्ध लाभ 66% घटकर 202 करोड़ रुपए रह गया था। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 586 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने बुधवार को कहा था कि तिमाही के दौरान उसकी कुल एकल आय 21,095 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 21,386 करोड़ रुपए थी। HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा ने कहा कि बीते दो वर्ष में आई कई चुनौतियों के बावजूद प्रौद्योगिकी की मांग का माहौल अच्छा बना हुआ है और वैश्विक ग्राहकों का पूरा ध्यान तेज गति से डिजिटल रूपांतरण करने पर है। नाडर ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर एशिया, मध्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका कंपनी के लिए नए क्षेत्र हैं, जहां भविष्य में वृद्धि करने की योजना है। उन्होंने कहा, बीते दो साल अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हैं, इसके बावजूद मांग संबंधी वातावरण मजबूत बना हुआ है। यूरोप और अमेरिका में विभिन्न ग्राहकों से चर्चा का जिक्र करते हुए नादर ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पूरी दक्षता के साथ डिजिटल रूपांतरण कार्यक्रमों की गति तेज करना है। देश के कोविड 19 महामारी से संबंधित बाधाओं से उभरने के साथ इस साल औसत वेतन वृद्धि लगभग 8.13% रह सकती है, एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। टीम लीज की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए द जॉब्स एंड सैलरी प्राइमर रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों के मुकाबले इस साल लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के सालाना वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि वेतन वृद्धि सीमित रहेगी। रिपोर्ट में 17 क्षेत्रों की समीक्षा की गई, जिसमें से 14 क्षेत्रों ने वेतन में 10% से कम की वृद्धि की संभावना जताई है। वहीं औसत वेतन वृद्धि 8.13% रहने का अनुमान है। ये टीम लीज सर्विसेज की एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 17 क्षेत्रों और 9 शहरों में 2,63,000 से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान को ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भौगोलिक आधार पर सबसे अधिक वेतन वृद्धि देने वाले शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।